नौशाद, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
नौशाद, आप करियर काउंसलर हैं, करियर कोच हैं, तो हमें बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में करियर काउंसलिंग का क्या अर्थ होता है?
करियर काउंसलिंग का अर्थ ये होता है कि अब हमारे जीवन में हम कई जगह पे करियर परेशानियों से गुजरते हैं, जैसे आपको करियर चूज करना हो, या आपको करियर चेंज करना हो, या आपको करियर में आपका जॉब चला गया हो और आपको नया जॉब ढूंढना हो, तो कई तरीके से हमारे जीवन में इंसिडेंसेस होते हैं कि उसकी वजह से हमको कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम ज्यादा तौर से करियर काउंसलिंग बोलते हैं, जिसको यहाँ पे करियर कोचिंग या करियर डेवलपमेंट या करियर प्लानिंग भी उसको बोलते हैं।
नौशाद, आपके पास हर फील्ड के कैंडिडेट्स आते होंगे। हाँ। और हर समुदाय के कैंडिडेट्स भी आते होंगे, तो क्या करियर कोचिंग में भारतीयों का इंटरेस्ट है?
भारतीयों का इंटरेस्ट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ट्रेडिशनली भारत में करियर काउंसलिंग एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने जब करियर का पसंद भी किया था, जब 92-93 में मैंने इंजीनियरिंग इसलिए पसंद किया था क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर है। ऑल्दो आफ्टर मेनी इयर्स आई रियलाइज दैट आई शुड हैव गॉन इनटू आर्ट्स और यू नो सम क्रिएटिव परस्यूट्स, लेकिन वो मेरे को कई सालों के बाद मुझे समझ में आया। तो करियर काउंसलिंग एग्जिस्ट नहीं होता है उस तरीके से जहाँ पे वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज में वो इतना एग्जिस्ट है, और उसका इतना उस पर रिसर्च भी हुआ है, और ये मेन स्ट्रीम में गिना जाता है कि जब आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप करियर कोच के पास जाते हैं। भारतीय समुदाय में यहाँ पे मुझे ये देखने को मिला है कि इनिशियली वो ये आइडियाज से इतने प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब वो जॉब में चले जाते हैं उसके बाद उनको ये मालूम होता है कि शायद वो एक्स्ट्रा असिस्टेंस या ऑब्जेक्टिव असिस्टेंस से हमको फायदा होगा।
नौशाद, जब आपके पास इंडियन ऑस्ट्रेलियंस आते हैं तो वो किस कैटेगरी के होते हैं? ज्यादातर माइग्रेंट्स, स्टूडेंट्स या एस्टेब्लिश्ड माइग्रेंट्स?
मेरे तीनों तीन कैटेगरी की जो आपने बात की, सबसे पहले जो मेरे पास आते हैं वो है न्यू माइग्रेंट्स, जो अभी अभी इंडिया से आए हुए हैं, वो सबसे ज्यादा आते हैं मेरे पास। दूसरे आते हैं जो इंडियन, जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिन्होंने अभी मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट किया हो और वो जॉब ढूंढ रहे हैं। और तीसरे जो होते हैं वो सेटल माइग्रेंट्स के, जो अपने जॉब में एक लेवल तक पहुंच गए, अभी उनको आगे जाना है, तो वो कैसे वो जा सकते हैं, उस हेल्प के लिए मेरे पास आते हैं लोग।
किन किन फील्ड से और किन क्षेत्रों से आते हैं ये कामकाज के?
गुड, मेरे ख्याल सबसे मेरा जो बड़ा क्लाइंट समुदाय है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, दूसरे है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से, और तीसरे है इंजीनियरिंग से। दीज आर द थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ द क्लाइंट्स दैट आई हैव dealt with in past and I continue to deal with them.
किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं ये आपके क्लाइंट्स जो आपके पास आना पड़ता है इनको?
सबसे पहली जो समस्या होती है, जो सबसे उस कारण वो आते हैं, वो है उनके पास, उनको जॉब नहीं मिलती है। मैं आपको एक टिपिकल केस सुनाता हूँ कि कोई आया है इंडिया से और उन्होंने दूसरे दिन आके जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता हुआ, उन्होंने 200, 300, 500 जॉब अप्लाई कर दी, लेकिन उसमें से एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आता। तो वो सारे जो लोग होते हैं कि जो फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, कि जिनको अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं, और उनको सपोर्ट चाहिए कि उनको पहली जॉब मिलने के लिए, पहली प्रोफेशनल जॉब मिलने के लिए, वो सबसे ज्यादा लोग होते हैं कि जो मेरे पास आते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि क्या मेन प्रॉब्लम होती है कि उनको जॉब नहीं मिल रहा होता है? फर्स्ट स्टेप क्या गलत ले रहे होते हैं वो लोग?
फर्स्ट स्टेप इसमें ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि क्योंकि करियर काउंसलिंग इतना इंडियन और एशियन कम्युनिटी में इतना एग्जिस्ट नहीं करता, अपने कंट्री में भी इतना डेवलप्ड नहीं है, इसकी वजह से हमको हमारे खुद का नॉलेज नहीं होता। करियर काउंसलिंग या कोई भी परस्यूट की शुरुआत होती है कि जब यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, सो दैट इज द कोर ऑफ एनी काउंसलिंग। तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है मेरे लिए कि उनको ये बताना कि आप अपने आप को जानो, अपनी स्किल्स को पहचानो, अपनी जो आप बोल सकते हो कि अपनी वैल्यूज को पहचानो और आपके पैशन को ढूंढो कि आपने इंडिया में इंजीनियरिंग किया है उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आने के बाद आप इंजीनियरिंग ही करो, आप कुछ और भी कर सकते हो। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप को पहचानना। वो हम इतना ज्यादा काम नहीं करते ऑनेस्टली। मैंने ये मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि क्योंकि हम लोग जॉब में चले जाते, उसने उसके बाद 9 to 5 जॉब किया, घर पे आए, यू नो, खाना खाया, टीवी देखा, सो गए, बच्चों के साथ खेले, तो हम कभी करियर के बारे में इतना ज्यादा डीपली मेरे ख्याल से कोई नहीं सोचता। हम 5% टाइम भी नहीं देते हमारा उसको। तो यहाँ पे आने के बाद मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग आप ये मान लो कि ये आपके लिए ट्रांजिशन फेज में आपको अपने आप को जानना सबसे बड़ा जरूरी होता है। फिर आप अपने आप को जान गए उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट के साथ उसको मैच कर सकते हो कि कौन से क्षेत्र में या कौन से फंक्शंस में आपकी स्किल्स सबसे ज्यादा होती है। तो ये दो स्टेप है जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते।
जब कैंडिडेट ये जान जाते हैं, खुद को पहचान जाते हैं आपके जरिए, तो उसके बाद और स्किल फील्ड भी उन्होंने पहचान ली, उसके बाद तीसरा स्टेप आई थिंक रिज्यूमे इज सबसे इम्पोर्टेंट होता होगा कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सबसे वो उसके वही होता है कि जब लोग जॉब ढूंढना शुरू करते हैं सब सबसे पहले रेज्यूमे लिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप पिछले दो स्टेप में क्लियर नहीं है तब तक आप क्या रेज्यूमे लिखेंगे। अगर आप ये मान लो कि आप अपनी कंपनी चला रहे हो और आप अपनी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको प्रोडक्ट के फीचर्स पता होने चाहिए, आपको क्यों प्रोडक्ट वो एग्जिस्ट करती है वो पता होना चाहिए ताकि आप वो स्टेप ले पाए। तो रेज्यूमे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन वंस करियर। और रेज्यूमे, मेरा ये मानना है कि रेज्यूमे को हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, नहीं के डॉक्यूमेंट ऐसा हो सकता है कि जहां पे मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी, सब डंप कर दिया पूरा, और फिर मैं ये मानता हूं कि अभी एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी, एम्प्लॉयर उसको कैसे लेता है। तो हमारा खुद का रेज्यूमे आपके कंट्रोल में डॉक्यूमेंट है। तो मैं चाहता हूं कि जब कोई रेज्यूमे लिखे तो वो ऐसे लिखे कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं खुद का, और जब मार्केटिंग हम अपना खुद का करते हैं तो बेस्ट पॉइंट्स हम लोग आगे रखते हैं। तो ये मेरे को ये आंसर ले जाता है कि रेज्यूमे क्या इम्पोर्टेंट है। रेज्यूमे में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक रिसर्च भी हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी रिक्रूटर के पास या एम्प्लॉयर के पास वो 15 से 30 सेकंड होते हैं वो जज करने के लिए। तो उसमें अगर आपने वो आप क्या हो, आपके एक्सपीरियंस क्या है और वो क्यों हायर करे आपको, ये तीन क्वेश्चन का जवाब अगर आपने क्रिस्पली और पहले पेज में ही लिख दिया तो आपका रेज्यूमे आगे जाएगा।
आप क्या टिप्स देंगे ब्रीफली, 2 या 3 टिप्स रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर?
सबसे पहला तो टिप मेरा ये है कि रेज्यूमे में आपकी जो अचीवमेंट्स होती है, आपने जो अच्छा अच्छा काम किया है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो सबसे पहले हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कोई सेल्स प्रोफेशनल है तो अगर सेल्स प्रोफेशनल ने, आप ऐसा मान लो कि उसने अगर टेरिटरी को 150% एक्सपांड किया तो वो लिखना जरूरी है, वो भी फ्रंट पेज पे लिखना। तो हमारी काफी अकम्प्लिशमेंट्स होती है कि जो हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं वो फर्स्ट पेज पे लिखना जरूरी है। दूसरा मैं ये टिप ये दूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी क्रिटिकल, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी क्रिटिकल, विच यू नो कमिंग फ्रॉम इंडिया और एशियन बैकग्राउंड वी समटाइम्स लैक द प्रोफेशनल लैंग्वेज इट्सेल्फ। तो वो दूसरी चीज मैं मानूंगा। तीसरी चीज ये कि आपका रेज्यूमे में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिजाइन का और वो अपील का कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि एक ऐसा नहीं कि आपने एक बार इसमें ये फॉन्ट डाल दिया, दूसरे में दूसरा फॉन्ट डाल दिया, वो नहीं चाहिए। हमको एक डिजाइन का, लैंग्वेज का एक प्रकार का कंसिस्टेंसी चाहिए। और अकम्प्लिशमेंट आप अगर अपने आप को नहीं बेच पाएंगे तो वो एम्प्लॉयर वो ऐसे नहीं सोचेगा कि भाई चलो ये बंदे को हम काम दे सकते हैं क्योंकि यू नो हम लोग ढूंढ लेंगे कि इसने क्या अच्छा काम किया है। वो जमाना चला गया अभी, इतना कंपटीशन में वन हैज टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन दैट पीस ऑफ पेपर।
नहीं, SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।